ओम शांति। आप सभी भाई बहने बहुत लंबा सफर तय करके शांतिवन बाबा के घर में उड़ते उड़ते पहुंच गए, तो आप सभी का शांतिवन में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हमारे बीच में हमारी अथक सेवाधारी सुनीता बहन पानीपत हुड्डा सेवा केंद्र के प्रभारी, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन जीवन के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद जीवन को ईश्वरीय सेवा में आपने समर्पित किया, पानीपत रिफाइनरी NFL की फैकल्टी मेंबर हैं आप और यूथ विंग की भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और ग्रीन द अर्थ ग्रीन द माइंड अभियान में भी आप ग्रुप लीडर रहे और 169 प्रोग्राम किए, बहुत अथक मेहनत की और आपने फर्स्ट प्राइज भी लिया। तो ब्राह्मण जीवन में कैसे हम आगे बढ़े, तो आपको अच्छे अच्छे अपने अनुभव सुनाएंगे सुनीता बहन पानीपत हुड्डा से। ओम शांति।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। जगत नियंता सर्वशक्तिवान, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर शिव बाबा की अति प्रिय संतान, मधुबन वरदान भूमि में उपस्थित सभी वरिष्ठ दीदियां, आप सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, हम सब जानते हैं कि जब हम बाबा के बने तो ये हमारा जीवन अनमोल जीवन है, खुशियों भरा जीवन है। अव्यक्त बाप दादा ने हम सबको पिछली कई मुरलियों से लगातार ये इशारा दिया है, खुश रहना है और खुशियां बांटनी है। बहुत सुंदर बात किसी ने कही है कि जिंदगी को दो दिन की जिंदगी है तो दो ही तरीके से जियो, जियो तो फूल बनकर और बिखरो तो खुशबू बनकर। अगर आप फूल बनकर जीते हैं, मुस्कुराते हुए जीते हैं, तो ये जिंदगी वरदान है। अगर आप इसे बोझ समझते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को देखने की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। जब से हम सबने बाबा का हाथ पकड़ा, अपना सब कुछ बाबा को सौंपा, अब हमें हर पल ये लगना चाहिए कि मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। जितना ज्यादा आप अपने भाग्य को याद करेंगे तो ये भाग्य और बढ़ता जाएगा। ध्यान से समझेंगे हम इस चीज को। कभी कभी हम अकेले में बैठकर ये बात सोचते हैं, मेरा भाग्य अच्छा नहीं, मेरी तकदीर अच्छी नहीं, मैं जो कुछ करता हूं मुझे सफलता नहीं मिलती है, आदि आदि कमजोर विचार हमारी खुशी को छीन लेते हैं। अगर आप रोज ही बात सोचते हैं कि मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं और मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, तो ये गारंटी है आपका भाग्य बहुत अच्छा बन जाएगा। आपको खुद ही खुद को ताजुब होगा कि मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। हमारी खुशी कब गायब हो जाती है? जब हम दूसरों को देखने लगते हैं ना, तो खुशी चली जाती है, बिना बताए ही चली जाती है। और हम सबकी आदत बन गई है दूसरों को देखने की और तुलना करने की। अगर करना भी है तो उन लोगों से तुलना करें जो आपको आगे लेके जाएं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि व्यक्ति अपने पास सब कुछ होते भी दूसरे के पास जरूर देखता है उसके पास क्या क्या है, और उस समय हमारी खुशी चली जाती है। अगर आप दूसरों को देख ही रहे हैं तो आप अच्छी चीज नोट कर लें कि ये पुरुषार्थी किस पुरुषार्थ से आगे गया, मुझे भी आगे जाना है। अगर हम कमजोरियां ही देखते रह जाएंगे तो निश्चित रूप से कमजोर बन जाएंगे। तुलना वृत्ति को परिवर्तन करना है और अकेले में बैठकर सोचो आपको बाबा से क्या क्या मिला है। केवल एक बार लिस्ट तो बनाएं, मुझे उसने क्या क्या दिया है। अगर आप एक एक प्राप्ति को याद करेंगे तो आपके दिल से निकलेगा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आप में से किसी ने लिस्ट बनाई है कि बाबा ने मुझे क्या क्या दिया? अगर किसी ने बनाई है तो प्लीज रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करें। बाबा से मुझे क्या क्या मिला? बहुत कम है, बहुत कम। चलिए एक छोटा सा पुरुषार्थ है ये, मुझे बाबा से क्या क्या मिला है, और एक एक प्राप्ति के लिए हम बाबा को धन्यवाद देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मन खुशी से प्यार से अहोभाव से भर जाएगा। अमृत वेले से लेकर अगर आप बाबा को सामने रखते हैं और याद करते हैं किसने मुझे क्या से क्या बना दिया, तो स्वतः ही आपका दिल बाबा की शुक्रिया करेगा। जो शुक्रिया करते हैं उनके मन में कोई शिकवा नहीं रहता। बहुत लोग बाबा से भी शिकवा करते रहते हैं, बाबा आपने उसको तो ये दिया और मुझे नहीं दिया। लेकिन जो उसने दिया है उसका एक एहसास, जिगरी एहसास हम नहीं करते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा है ये भी बहुत बड़ी गिफ्ट है। शुक्रिया करें बाबा का कि आपका तन स्वस्थ है। ये करोड़ों की संपत्ति से भी ज्यादा है कि आप स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। आपके संस्कार अच्छे हैं ये भी बहुत बड़ी संपत्ति है आपके पास, शुक्रिया करें उसका। कईयों के संस्कार टकराने वाले होते हैं, जहां जाएंगे वहीं टकराएंगे। बी एन एक्सपर्ट ड्राइवर। एक्सपर्ट ड्राइवर किसे टक्कर नहीं मारता, कभी वो फास्ट चलता है कभी स्लो चलता है, लेकिन जो होशियार ड्राइवर होते हैं वो टक्कर नहीं मारते हैं। तो हम सब भी ध्यान रखें इस ब्राह्मण जीवन में, मुझे किसी से टकराना नहीं, क्योंकि टकराव से बहुत शक्तियां बर्बाद जाती हैं। अगर पूरा ही दिन टकराव में चला गया तो आप प्रभु मिलन का अनुभव कैसे करेंगे? आपस में भी अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और समझ से समझौता करें। कभी कभी हम समझ से समझौता नहीं करते, मजबूरी से समझौता करते हैं। अगर खुश रहना है तो एक दूसरे को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। सबके संस्कार तो एक जैसे हो भी नहीं सकते, है ना? हम हर काम क्या चाहते हैं, परफेक्टली होना चाहिए, हर काम परफेक्ट हो। किसी दूसरे का भी डिफेक्ट हमें परफेक्ट बनाने के लिए है, हमें उसके प्रभाव से मुक्त रहना है। सभी हमारे अनुसार नहीं हो सकते, प्रयास करें उनका प्रभाव हम पर ना पड़े। ऐसी अच्छी स्थिति हो कि हम दूसरों को समझ के चलें, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। एक छोटा सा उदाहरण सुनाना चाहूंगी। हमारे पास एक बहन आती है, कभी कभी आती है वो, और जब कभी बहुत परेशान होती है वो तभी आती है, जब उसकी सास ने तंग कर दिया, बच्चों ने तंग कर दिया, उसे कुछ नहीं दिखता, उसे लगता है कि आज मेडिटेशन हट में जाना चाहिए और दीदियों से कोई अच्छी बात सुननी चाहिए। तो वो जब भी आती है और बड़े ऑड टाइम में आएगी, मतलब 2 से 4 के बीच में, जब दीदियों के रेस्ट का टाइम होगा। तो जब वो आती तो हमें पता चल जाता कि आज कुछ हो गया इसलिए आई है, और ऐसा थोड़ा थोड़ा सुनते उसने अपने आप को अपलिफ्ट किया, बाबा की बातों को समझा। तो कुछ दिन पहले वो जैसे मुझे नजर आई, मैंने उससे पूछा कि आप ठीक हैं? तो उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहती आज मेरा हैप्पी बर्थडे है तो मैं सेंटर पे तिलक लगवाने के लिए आई हूँ। मैं कहा वो तो ठीक है, अभी आपको तिलक लगेगा, आप सच में बहुत खुश हैं? उसने कहा हम बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहा लगता है सब ठीक हो गए हैं, आपकी सास भी ठीक हो गई, बच्चे भी ठीक हो गए। कहती नहीं वो तो हुए या नहीं हुए मुझे नहीं पता, पर मैं ठीक हो गई हूँ। मैंने कहा आप कैसे ठीक हो गए? कहती मैंने बस एक बात सोची है, अब ये कुछ भी बोलें कुछ भी कहें, मैंने अपने और अपनी मदर इन लॉ के बीच में बाबा को रखा है, जो बोलना है इसको बोलो, मुझे कुछ नहीं होगा। बाबा को साथ में रखा, अभी क्या लगता है उसको? नो प्रॉब्लम। फिर वो आएगी 8 दिन के बाद, मुरली क्लास रेगुलर नहीं, कभी कभी, लेकिन बाबा को यूज करना उसने सीख लिया है। अब उसको लगता है कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैं इनके प्रभाव से मुक्त हूँ। हम सब पे क्या होता है, बड़ी जल्दी असर आता है, किसी ने गलत बोल दिया तो असर आ जाएगा, कोई परिस्थिति आ गई तो असर आ जाएगा। कितनी भी बातें आए, हमें एक बात याद रखनी है कि ये बातें पाई पैसे की हैं, और जो मेरी स्थिति है वो मेरी करोड़ों की संपत्ति है। मुझे अपनी स्थिति को कभी बेचना नहीं, अपनी संपत्ति को संभाल के रखना है, और इस संपत्ति के द्वारा अपनी मनोस्थिति को हमेशा अच्छा बना के रखना है। आप किसी भी प्रॉब्लम को नहीं रोक सकते हैं, प्रॉब्लम्स तो कभी किसी रूप में आएंगी, कभी किसी रूप में आएंगी, लेकिन हमें उस प्रॉब्लम से केवल पाठ सीखना है और आगे बढ़ना है। आपको जितने भी पाठ सीखने को मिले वो प्रॉब्लम नहीं सिखाए, जो आपने बुक्स में पढ़ा था किसी को भी याद है? शायद बुक्स के नाम भी याद ना हो, और बुक्स का जो हमने पढ़ा उसका कोई कोई इसेंस हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा पाठ हम सबने परिस्थितियों से सीखे हैं। तो परिस्थिति के सामने हमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए उपहार। क्या लिखना चाहिए? उपहार, कि ये मेरे लिए कोई उपहार लेके आई है और कुछ ना कुछ मुझे इससे सीखना है। और जो लोग सीखते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जिंदगी के पन्नों में कुछ इस तरह से लिखा जाए कि इस पवित्र पुस्तक को ऐसा कि सुबह शाम पढ़ा जाए। हमारी जिंदगी की किताब को कोई पढ़े तो उसे सीखने को मिले, हमें खुद को भी अच्छा लगे, ऐसा कुछ लिखना है। उसके लिए हर दिन को बहुत अच्छा बनाना है, और दिन अच्छा कब बनेगा? जब आपका हर मिनट हर सेकंड अच्छा होगा। एवरी सेकंड इज इम्पॉर्टेंट, कि आप उसमें क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। छोटी सी बात आई हमारी मनोस्थिति हिल गई, फिर हम योग करने चले, फिर कोई बात आई फिर हिल गए। लेकिन अपनी मनोस्थिति को अच्छा रखने के लिए अपने से कमिटमेंट, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी श्रेष्ठ स्थिति को छोड़ना नहीं, अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं। जब आप अपने से वायदा करेंगे तो आप मजबूत रहेंगे। और रोज अपने से बात करते रहो कि आज के दिन में कितनी भी बातें आई, क्या मैं ठीक हूं? मन से भी ठीक हूं? मन से अगर आप ठीक रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। केवल अपने को टाइम देना है। आप देखिए टाइम तो हमारे पास कहाँ होता है, आप मोबाइल यूज करते हैं फिर भी आप उसे चार्ज करते हैं ना, आप कभी नहीं कहते आई हैव नो टाइम, निकालते हैं ना टाइम। तो हमें अपने लिए भी टाइम जरूर निकालना है। और बहुत सुंदर एक अभ्यास है कि 1 घंटे में 1 मिनट के लिए वतन में बाबा के पास जाओ, बाबा को देखकर बाबा के स्वरूप को देखते हुए बहुत दिल से बाबा के लिए गीत गाना है। गा सकते हैं ना गीत? और गीत गाना सबको बड़ा अच्छा लगता है। बाबा को देख के हम सब गीत गाएंगे, मेरा बाबा, बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल का सहारा बाबा, शुक्रिया बाबा। अगर आप 1 घंटे में 1 मिनट वतन में जाएं, बाबा को देखें, बाबा से शक्ति लेकर फिर कर्म क्षेत्र पे लौट आएं, तो आपकी बैटरी चार्ज रहेगी। करके देखिए, देखिए हम क्या सुनते हैं nobody knows. जो हम करते हैं सारा संसार हमें देखता है. जो भी परिवार में रहते हैं उन्हें सैंपल बन के रहना है. आप अच्छी बात मुरली में सुनते हैं और घर में जाके ऐसा वैसा व्यवहार करते हैं तो सबके बहुत संकल्प चलते हैं ना. कभी कभी हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन व्यवहारिकता के क्षेत्र में हम खरे नहीं उतरते. बुरा मत मानिए, जो परिवार में रहने वाले हैं उनके हर कदम को दुनिया बड़े गौर से देखती है. आपका चलना, आपका बोलना, आपका बच्चों से व्यवहार करना, सब लोग नोच करते हैं. आप क्या सुन के गए थे मुरली में ये केवल आपको पता है, मगर आपने जो किया उसको सारा संसार देखता है. हमें ऐसा प्रैक्टिकल बनना है कि दुनिया अगर देखे तो उनको सीखने को मिले. हम व्यवहार में कैसे हैं, हम बोल में कैसे हैं, क्या हम उनको भी अपना मानते हैं या केवल अपने दो चार जो सदस्य हैं उन्हें ही अपना मानते हैं. कई ब्राह्मण भी ब्राह्मणों से अच्छा व्यवहार नहीं करते, एक दूसरे को ओम शांति भी नहीं बोलते हैं. किसी से बोलेंगे किसी से नहीं बोलेंगे तो लोग हमसे क्या सीखेंगे. कम से कम एक दूसरे को प्यार से मुस्कुराते हुए ओम शांति जरूर करनी चाहिए. कैसे करनी चाहिए, एक दूसरे को करो. देखो कोई कोई देख भी नहीं रहे एक दूसरे की ओर ना, कितना मुश्किल लगता है ना. हम ब्राह्मणों को इतना मुश्किल लग रहा है तो बाहर वालों को कैसा लगता होगा. हम एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से नहीं देखते हैं. कहीं पर भी आप देखेंगे कि लोग ऊपर ऊपर से बोलते हैं ओम शांति, बस ऊपर ऊपर से बोला और चले गए. लेकिन क्या सच में मैंने आत्मा को देखा, महसूस किया कि मेरे सामने देवकुल की महान आत्मा है, विशेष आत्मा है. मधुबन में आके भी ज्यादातर लोग शक्लें मिला रहे होते हैं, ये हरियाणा का लगता है, ये पंजाब का लगता है, ये गुजरात का लगता है. आप देखिए आप कितने कारोबार छोड़ के आए ना, कितना कुछ छोड़ के आए और यहाँ पे एक दूसरे को देख के बस यही सोचते हैं कि ये भी देखा हुआ लगता है. अरे वही, हम सब तो देखे हुए ही हैं, सतयुग से हमारी यात्रा शुरू हुई है तो हम सब तो पूर्व परिचित है ना. हम एक दूसरे को उन ऊंची स्थिति में देखें जैसे बाबा देखता है. हम यहाँ पर भी यही देखते रहेंगे एक दूसरे की ड्रेस शूज तो सच्ची कमाई कब जमा करेंगे. हम सब ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के लिए वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा बाबा चाहता है. हम एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हों, हमें लगे कि ये हमारा कल्प पहले वाला भाई है, कल्प पहले वाली मेरी बहन है. जितनी ऊंची आपकी भावनाएं होंगी ना उतना अच्छा आपका योग लगेगा. आपको लगेगा कि मेरी सच्ची कमाई जमा हो रही है. अब यहाँ इतना बड़ा परिवार है, एक एक को देखते हुए आपकी आंखें थक जाएंगी. आप एक दूसरे के मस्तक में मणि को देखते हुए सोचो कि ये महान आत्मा है, विशेष आत्मा है. आपको बहुत खुशी मिलेगी और टाइम भी सेव हो जाएगा. संकल्प और समय इन दोनों को बचाना है, बचत करनी है. एक दूसरे के प्रति जो श्रेष्ठ व्यवहार है ये अनेक आत्माओं को बाबा के घर से जोड़ता है और हमारा गलत व्यवहार तोड़ता भी है. मैं आपको सच बात सुनाती हूँ. हमारे पास पिछली बार एक ग्रुप आया तो उसमें एक बुजुर्ग थे और उनकी एज थी 87 ईयर. तो हम पीस पार्क में से बैठे हुए थे, ज्ञान की लेन देन कर रहे थे. तो सबसे मैं पूछा कि आज आपको क्लास में क्या अच्छा लगा. हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल बात जो हम अपना सके वो करनी है. तो एक बाऊजी थे, उन्होंने कहा कि बहन जी आज मैं बहुत खुश हूँ. तो मैंने कहा बाऊजी आप किस लिए खुश हैं, क्या आप पीस पार्क में आए हैं और यहाँ बहुत अच्छे गुलाब हैं, कई वैरायटीज हैं इसलिए. कहते नहीं, मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ और ऐसी खुशी का अनुभव मैंने पहली बार किया है. मैंने कहा किस लिए. बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि मैंने आज जो एक बात सीखी कि हमें जल्दी से दूसरों को माफ कर देना है और अच्छाई को देखना है. मैंने इस बात को प्रयोग किया. मैंने कहा कैसे प्रयोग किया. कहते आज मैंने उस व्यक्ति से बात की जिससे पिछले 37 ईयर से मैं बात नहीं कर रहा था. मैंने छोड़ दिया था, मुझे अच्छा नहीं लगता था उसका व्यवहार, मैंने छोड़ दिया था. पर आज मैंने सीखा कि जल्दी से माफ कर देना चाहिए और मैंने मन से माफ किया तो मेरे को ऐसा लगता कि मेरा बोझ उतर गया और मैं बहुत खुश हूँ। आज भी वो जीवित हैं, वो बाबूजी 90 इयर्स एज है उनकी, लेकिन वो कहते कि मैंने ये जो बात सीखी इससे मुझ में जीने की कला आ गई। कई बार हम ब्राह्मण बनके भी एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं, अपने लिए तो माफी हम लेना चाहते हैं लेकिन कोई दूसरा गलती कर दे तो हम उसे माफ नहीं करते। अपनी गलती हमसे हो गई से सॉरी, और अगर किसी दूसरे से हो गई तो हमें उसको माफ भी कर देना। अगर हम माफ नहीं कर सकते तो हमारा योग कभी भी अच्छा नहीं लग सकता। देखिए, आप योग रोज लगाते हैं लेकिन जब आप अटेंशन देकर बैठेंगे तो आपका योग अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं कि हम लोगों से गलतियां नहीं हुई, हर एक से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। शक्तिशाली वो लोग होते हैं जो दूसरों को माफ करते हैं और कमजोर लोग बदला लेते हैं। आप सब कौन है? शक्तिशाली हैं। जो समझते हैं मैं शक्तिशाली हूं जरा हाथ खड़ा करें। गुड, इतनी सारी शक्तिशाली आत्माओं को प्रणाम है। लेकिन आज आप उन्हें माफ कर देंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया। रेडी? अच्छा गुड, पहले ही कर दिया। संकल्प से हम उनको शुभ वाइब्रेशंस भी देंगे और माफ कर देंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा ले लेंगे। और एक छोटी सी बात, कभी कभी हम कुछ करते हैं ना तो तुरंत लेने की कामना करते हैं। आप देखिए कि जो मजदूर होता है ना वो पूरा दिन मेहनत करता है तब उसे कुछ मिलता है, जो भिखारी होता है बिना किए उसे कुछ मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, लेकिन जिसके मन में किसी से कोई इच्छा नहीं उसे सब कुछ मिलता है, जो चाहिए वही प्राप्त होता है। जो मजदूर होता है उसने जितना किया उतना लेके चला जाएगा, जो भिखारी है थोड़ा सा भी देंगे लेके चला जाएगा, लेकिन जिसने समर्पण भाव से कर्म किया वो सब चीजों का अधिकारी बन जाता है, विशेष दुआओं का अधिकारी बन जाता है। हम सब ब्राह्मणों को अपने व्यवहारिक पक्ष पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम जब परिवार में रहते हैं तो हमें परिवार को, प्रवृत्ति को सेवा केंद्र समझ के रहना है कि ये मेरा नहीं, ये बाबा का घर है। अगर हम परमात्मा पिता का समझ करके चलते हैं तो जीवन के अंदर बदलाव शुरू हो जाता है। बी ऑनेस्ट, आप में से जिनके अपने मकान है वो हाथ खड़े करें, जिनके अपने मकान है। गुड गुड, और करें। और जिनके किराए के मकान है वो हाथ खड़ा करें, और जो बाबा के मकान में रहते वो हाथ खड़ा करें। देखिए आप सब बदल गए ना, हम सबको याद ही नहीं रहता कि सब कुछ बाबा का है, हम सब यही सोचते हैं मेरा मकान है। मैंने देखा कि एक माता जी 25 साल से ज्ञान में चलती हैं, पर वो पूरा दिन यही बोलती है मेरा बेटा मेरा है, बाबा मेरा है वो कम निकलता है, लेकिन संबंधों में मेरापन बहुत ज्यादा है। हमें इस चीज को परिवर्तन करना है, ये अनुभव करें कि हेड ऑफ द फैमिली बाबा है, हम बाबा के मकान में रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं, कौन कौन रहते हैं बाबा के मकान में? ठीक है, आप सबने चेंज कर लिया ना, अपने को चेंज करना यही ब्राह्मण जीवन है। हर पल अपने को बदलते जाना है, हमें कभी नहीं सोचना कि मुझे सब कुछ आता है, हम सब सीख रहे हैं और अपने को बदल रहे हैं। अपने को परिवर्तन करना हर दिन आगे बढ़ने का आधार है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद को ही देखना है और खुद को ही बदलना है, और अपने से एक पक्का वायदा करना है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी संपत्ति खुशी को नहीं छोड़ना है। और ये छोटे छोटे टिप्स यूज करनी है कि मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है। घर किसका है, बच्चे किसके हैं, हम किसके हैं? चलिए मिलके बोल देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका है, ये जीवन आपका है, परिवार आपका है, समस्याएं आपकी हैं, परेशानियां भी आपकी हैं। परेशानियां किसकी हैं? बाप की हैं, है ना? बुद्धि से अर्पित कर देना। और बाबा ने एक पाठ हम सबको पक्का कराया है खुश रहने के लिए, जो बहुत अच्छा है और हम 1 जनवरी से उसको अच्छे से अटेंशन देके कर रहे हैं, वो है कि सदा अपने भाग्य की सराहना करना और वाह वाह करना। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरी श्रेष्ठ तकदीर। जब कुछ रिवर्स हो जाता है ना, तब वाह वाह नहीं निकलती, तब तो हाय क्या हुआ, बाबा आपने क्या किया। एक ब्राह्मण ने यहां तक कहा कि बाबा किस जन्म का बदला ले रहे हो। मैंने उनको कहा बाबा थोड़ी बदला लेता है, बाबा लेता है क्या, हमें पता ही नहीं चलता हम किसको क्या बोल रहे हैं। इंसानों को तो बोलते ही थे और अब सर्वशक्तिमान को भी बोलने लगे, वो थोड़ी बदला लेता है। वो तो हमें सिखा रहा है कि बदला नहीं लेना, बदल के दिखाना है। हमारा अपने प्रति व्यवहार बहुत अच्छा हो, अपने से कभी निराश नहीं होना। हमेशा याद रखना है कि निराश होना जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती है। कभी भी निराश नहीं होना। आप कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर परीक्षा आ जाती है, स्वभाव संस्कार आ जाता है, अगर हम अपने स्वभाव संस्कार से भी परेशान हो जाते हैं, तो हम इसको ठीक करना है कि मुझे बाबा का साथ मिला है तो मुझे बाबा को यूज करना है। जब आप बाबा को यूज करेंगे, बाबा के साथ से हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आप केवल करके देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप नहीं बदल सकते, बहुत सारी बातें हैं जो ना कही जा सकती ना सही जा सकती, आज वो सब बाबा को दे देंगे। एक मिनट के लिए हम सब बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे, अपनी उलझने अपनी समस्याएं सब बाबा को दे देंगे, और जिन्होंने हमारे साथ गलत किया उन्हें भी दिल से माफ कर देंगे। थोड़ा सा सतर्क होके बैठेंगे, सामने बाबा से दृष्टि लेते हुए चिंतन करें, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करें, अपने दोनों हाथ जोड़ लें जैसे आप कभी प्रेयर में जोड़ते थे। याद करेंगे अपनी गलतियों को और अपनी गलतियों की क्षमा ले लेंगे। विश्व की आत्माओं से सच्चे दिल से अपनी गलतियों की क्षमा ले लें। याद करेंगे उन लोगों को जिन्होंने आपको परेशान किया, उन्हें बाबा का बच्चा समझते हुए क्षमा कर देंगे। अपना राइट हैंड आगे करें, अपने हाथ की रेखाओं को ध्यान से देखें, महसूस करें परमात्मा शक्तियां हाथ पर आ रही हैं। ये हाथ वरदानी निर्विघ्न बन रहा है। अपने सिर पर रखेंगे, अनुभव करें बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। आज से मुझे सदा खुश रहना है। अपनी उलझने बोझ सब बाबा को दे दें। मैं खुश नसीब आत्मा ओम शांति। आप सदा खुश रहें और खुशियां बांटें। आपके श्रेष्ठ व्यवहार से सबको खुशी मिले मेरी मंगल कामना। धन्यवाद। ओम शांति। अभी हमारे बीच में है आदरणीय बिंदु दीदी जी। आप सिरसा सेवा केंद्र संचालिका हैं। आपको बहुत सुंदर प्रभु ने उपहार दिया है, ज्ञान रत्नों का सुंदर लेन देन करना। बहुत सी यात्राओं में आपने लीडरशिप क्वालिटी को सामने रखते हुए अच्छे से उसे कोऑर्डिनेट किया। आपने बैंक में अपनी सेवाएं भी की, वहां से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर बाबा की सेवा में समर्पित हुए। आपको बाबा ने एक्स्ट्रा क्वालिटीज दी हैं। कुछ ज्ञान रत्नों की लेन देन हम सबसे करेंगे। हम सब जोरदार तालियों से आदरणीय बिंदु दीदी का स्वागत करेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप भी हमें कुछ ब्राह्मण जीवन के लिए ऊंची श्रेष्ठ बातें जो हमारे जीवन को अच्छा बनाए उन पर प्रकाश डालें। आदरणीय बिंदु दीदी।
ओम शांति। सुनीता बहन जी ने बहुत अच्छी क्लास कराई ब्राह्मण जीवन में स्व उन्नति के लिए। तो अभी हमारे बीच में हमारी बिंदु बहन, आप सिरसा पंजाब से हैं और पिछले 35 वर्षों से आप बाबा की सेवाओं में समर्पित हैं। आप बैंक में सर्विस करते थे, बैंक ऑफिसर थे, सर्विस छोड़कर बाबा की सेवाओं में समर्पित हो गए और यूथ विंग के आप एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। तो बिंदु बहन आज अपने अनुभवों से सभी भाई बहनों को भरपूर करेंगे। तो बिंदु बहन जी का हम वेलकम करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। सभी जरा बुलंद आवाज से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। आप सभी मधुबन बेहद घर में पधारे हैं। सुनीता बहन ने कुछ टिप्स आपको पर्सनल प्रोग्रेस के दिए, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बात जो उन्होंने कही कि हमारी श्रेष्ठ स्थिति हमारी सबसे अमूल्य संपत्ति है। जितना भी हम पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, उस सब का अल्टीमेट ध्येय हमारा है अपनी एक अच्छी स्थिति के धनी बनना। हम बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानवान और योगी आत्माएं हैं। ज्ञानवान और योगी आत्माएं जब आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले पवित्र दृष्टि से मिलते हैं। हमारा ब्रह्मा कुमारीज का सबसे एक मेन चीज है जिस और लोग भी ध्यान देते हैं कि हम एक दूसरे दृष्टि से सबसे पहली मुलाकात करते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, जो अज्ञानी होते हैं ना, मालूम नहीं होता ये आप क्या कर रहे थे, फिर उनको बताते हैं कि कैसे जे एक रूहानी स्नेह का आदान प्रदान भी है और उसके साथ साथ आत्मिक दृष्टि का अभ्यास भी है और उसके साथ साथ एक दो से एक एनर्जी लेने का भी एक सबसे सशक्त सोर्स है हमारे नेत्र, हमारी दृष्टि। और उससे सेकंड स्टेप जो बाबा बताते हैं कि हमें आपस में लेन देन करनी है तो ज्ञान योग की बात की लेन देन करनी है, आपसी ज्ञान के अनुभवों की लेन देन आपस में करनी है, ऐसी लेन देन जिसमें हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हो और हमारा समय भी सफल हो और जो मिले उसको लगे कि आपसे मिलकर के हमें बहुत कुछ मिला, बात ही बात में हमने अपने आप को बहुत चार्ज्ड फील किया, ऐसा उनको फील होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में हम ईश्वरीय संतान हैं, बाबा के बच्चे हैं और भविष्य में हम होंगे देवी संतान, या यूं कहें कि पास्ट में हम थे देवी संतान, या फ्यूचर में होंगे, वन एंड दी सेम थिंग है। हमारे अंदर वो देवत्व विद्यमान है, विराजमान है हमारे भीतर। उसका बहुत बड़ा एक प्रूफ है कि जब भी ब्राह्मणों से छोटी सी भी कोई मिस्टेक होती है ना, तो मन खाता है, पश्चाताप होता है, स्थिति में भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है। इसलिए होता है क्योंकि गलती हुई है, गलती में स्थिति का नीचे होना कोई बुरी बात नहीं है, वो एक रियलाइजेशन का एक पार्ट है कि मैंने ब्राह्मण होकर के इतनी ऊंची पालना के बाद मैंने ये क्या किया। जैसे लौकिक संसार में होता है ना, बच्चों को कहते हैं कि अगर माँ बाप की पालना का वो कर्ज नहीं चुकाते हैं तो उनको स्वर्ग नहीं मिलता, ऐसा दुनिया में प्रचलित मान्यता है। तो हम भी अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि मैंने मम्मा बाबा वरिष्ठ दादियां दीदियों की पालना का क्या कर्ज चुकाया है, क्या रिटर्न दिया है। और बाबा बहुत बार मुरलियों में कहते हैं पालना का रिटर्न क्या है, स्वयं को टर्न कर लो, स्वयं परिवर्तन कर लो, पॉजिटिव चेंज कर लो, अर्थात एक अच्छी स्थिति अपनी बनाओ जो खुद के लिए भी बेनिफिशियल हो और जो आपके संपर्क में आए, आपके वाइब्रेशन ले, उसके लिए भी वो बेनिफिशियल हो। लेकिन एक बहुत अहम सवाल मन के अंदर पैदा होता है कि कोई ऐसा भी ब्राह्मण हो सकता है जिसको कुछ गलत करने के बाद वो सोचता रहे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे तो पुरुषार्थी हैं, कोई संपूर्ण थोड़ी हो गए, थोड़ी बहुत गलती तो सबसे हो ही जाती है, यानी उस गलती का हमें कोई एहसास नहीं, कोई पश्चाताप नहीं और स्थिति पर उसका कोई फर्क नहीं। तो ऐसे ब्राह्मणों को भीतर से सोचना चाहिए कि हमारा पास्ट देवत्व नहीं था, हमारा पास्ट कोई बहुत महान नहीं था। एक बहुत बड़ी निशानी है अपनी चेकिंग की, गलती में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, तो सिद्ध है कि हम कोई बहुत ऊंचे पद के अधिकारी नहीं थे। क्योंकि अभी भी मुझे कुछ नेगेटिव करने में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कईयों को होता ना, बाबा की मुरली यूं तो हम बाबा के बच्चे रोज सुनते हैं, लेकिन कई नहीं भी सुनते, तो सुनी या ना सुनी उस स्थिति में कोई अंतर नहीं रहता है। नहीं सुनी तो मन खाना चाहिए, उसी तरह गलती होने पर मन खाना चाहिए। अगर मुरली ना सुनने पर, ना पढ़ने पर, गलती हो जाने पर मन नहीं खाता है, पश्चाताप नहीं होता है, अटेंशन नहीं जाता है, तो इट मीन्स सत्युग में मेरा कोई बहुत ऊंच पद नहीं रहा होगा। ये अटेंशन विशेष हमें देना है। दूसरी बात, इस कलयुगी संसार के अंदर रहते हुए, विशेषकर आप गृहस्थी भाई बहने बाहर के वातावरण में रहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे संकल्प बाबा के बच्चे करते हैं। समझो कि कोई नौकरी में है तो मुझे रिश्वत नहीं लेनी है, सामने से कोई गुस्सा करता है, कोई उल्टा बोलता है तो मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे स्थिति को खराब नहीं करना है, या किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे शांत रहना है, ऑफिस का काम मुझे कोई करे ना करे लेकिन मुझे जरूर करना है, और इस संसार में रहते हुए मुझे पवित्र रहना है, ऐसे अनेका अनेक संकल्प हैं। ये इस संसार में रहते हुए ऐसी ही बात है जैसे कि जल में रह करके मगरमच्छ से बैर, ऐसी परिस्थितियों का या ऐसी बातों का या ऐसी सिचुएशंस का फेस करना पड़ेगा उनको। इसलिए खासकर जिन्होंने संकल्प रखा है कि हमें बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनानी है और समाज को कुछ देना है और चैलेंज जो आएंगी उसको फेस करना है, तो उनको अपनी साधना पर, अपने उमंग उत्साह पर, अपने पुरुषार्थ पर बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उनका ढीला ढालापन नहीं चल सकता है। एक्स्ट्रा अटेंशन, क्योंकि कोई जितनी भी बड़ी पोस्ट पर जाता है तो उसको ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है और ज्यादा परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। परीक्षाएं प्रोग्रेस का सिंबल है। इन सब चीजों को फेस करने के लिए और एक अच्छी सी स्थिति रूपी संपत्ति को बढ़ाने के लिए हमें कुछ एक बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहला है पवित्रता का बल। पवित्रता का सब्जेक्ट बहुत विशाल विशाल सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमारी मन की नेगेटिविटी, हमारी कर्म की नेगेटिविटी, हमारी बोल की नेगेटिविटी, हमारी स्थूल और सूक्ष्म धारणाएं, ये सब प्योरिटी के अंदर आती हैं। बाबा बहुत बार कहते हैं अगर मन में किसी के लिए अशुद्ध विचार भी है तो समझना चाहिए कि मैं 100% पवित्र नहीं हूँ। तो इसलिए पवित्रता इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसमें सारे ही सब्जेक्ट वास्तव में कवर हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य तो उसमें सबसे मुख्य है, लेकिन उसके अलावा जो सूक्ष्म है जिसकी ओर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और वो भी मन के विचारों पर। एक बीज है, जैसा बीज होगा वैसा फल निकलेगा। मुझे एक बात याद आती है, एक कोई मैं बुक पढ़ रही थी तो मुरारजी देसाई जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो कहते एक बार उनको किसी ने आकर के बोला कि इंदिरा गांधी आपको गंदा कहती हैं, खराब कहती हैं, तो मुरारजी देसाई ने बहुत अथॉरिटी से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरे लिए ऐसा कह ही नहीं सकती है। तो जिसने भी उनको बताया तो उसने एक क्वेश्चन किया, कहता चलो मान लिया नहीं कहा होगा, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप इतनी अथॉरिटी से कैसे कह रहे हैं कि वो मेरे लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकती है, आप इस चीज की गारंटी कैसे ले रहे हो, कैसे ऐसे अथॉरिटी से कह रहे हो। तो मुरारजी देसाई ने जवाब दिया कि मैं इसलिए इस अथॉरिटी से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आज तक इंदिरा गांधी के लिए कभी गंदा सोचा नहीं है, ना मैंने उसको कभी गंदी या बुरी कहा है और ना कभी मन में भी उनके लिए कभी ऐसा सोचा है, इसलिए जब मैं नहीं सोचा तो वो मेरे लिए नहीं सोच सकते। तो इस इंसिडेंट को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था कि वो तो नॉन बीके लोग हैं, वो कोई बीके भी नहीं है, तो भी उनकी सोच कितनी ऊंची है और कितनी पॉजिटिविटी है उस सोच के अंदर। अगर ऐसी ही सोच सच में ब्राह्मणों की हो जाए, एक दूसरे के लिए, लौकिक परिवार के लिए, अलौकिक परिवार के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, कहीं भी हम जिन भी लोगों के संपर्क में आते हैं, इनमें से, इस कहानी में से भी, इस वृत्तांत में से भी हम दो बातें उठा लेते हैं। नंबर एक कि मुझे किसी के लिए खराब कहना नहीं है, वर्णन नहीं करना है, और दूसरा अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखना है कि मेरे लिए कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है। मतलब कहने का कि हम बाहर के लोगों से भी अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातों की प्रेरणा जरूर ले सकते हैं। ये रूट है हमारा, और जो श्रेष्ठ स्थिति रूपी संपत्ति हम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए पॉजिटिविटी का इस हायर लेवल तक होना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। इस लेवल से, रूट लेवल से जब हमारी प्योरिटी बढ़ती है, तो दूसरी प्योरिटी भी हमारे लिए मुश्किल नहीं लगेगी। जो आज संसार के लोगों को धारणाएं मुश्किल लगती हैं, या कोई ना कोई ब्राह्मणों में भी ऐसा होगा, परंतु इस रूट लेवल से अगर प्योरिटी आ जाती है, तो फिर ये मोटे तौर की या स्थूल प्योरिटी उनके लिए कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। दूसरा है हमारा योग बल, तपस्या का बल, एकाग्रता का बल, जो हमारा सबसे मुख्य बल है। कितना हम अपनी दिनचर्या पर ध्यान देते हैं, कितना हम योग का चार्ट अपना रख करके चलते हैं, अवश्य ही ब्राह्मण करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ध्यान इसको देने की जरूरत है। हम लोग इंद्रप्रस्थ में ठहरे हुए हैं, तो उसमें एक बहुत सुंदर स्लोगन इस बात को लेकर के लिखा हुआ है, जो बहनें इंद्रप्रस्थ में ठहरी हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा रिसेप्शन में। उसमें लिखा है कि मुझे ज्ञानी आत्माएं, ज्ञानी बच्चे बहुत प्रिय हैं, लेकिन उसकी सेकंड जो दूसरी लाइन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ज्ञानी बच्चे बहुत प्रिय हैं, लेकिन योगी बच्चे तो मेरा ही स्वरूप है। योगी बच्चे तो जैसे मेरा ही स्वरूप है, तो इसलिए ज्ञान के साथ साथ और ज्ञान से भी बड़ा, ऊंचा और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है योग का। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी अगर देखा जाए तो योग ही है, और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी ब्राह्मणों के लिए योग ही है, जब उसका रियल मीनिंग समझते हैं। योग लगाना सबको आता है, थ्योरेटिकल विधि सबको आती है। अगर आपको भी कहा जाए कि आप योग के बारे में यहाँ आके बताओ 15 मिनट, तो आप बहुत अच्छा, सब बड़ों से भी अच्छा बता सकते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा बताने के बाद भी कहीं ना कहीं अच्छी अनुभूति नहीं होती है, जिसका सूक्ष्म संबंध हमारी सूक्ष्म धारणाओं के साथ, हमारी मन की प्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। सारा प्रोसेस अपनाने के बाद भी कहेंगे जैसा आपने सिखाया, जैसा आपने कहा वैसा किया, लेकिन वैसी अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि इसका लिंक हमारी धारणाओं के साथ, हमारी सोच के साथ, हमारी दूसरों के प्रति भावनाओं के साथ बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। हमारा अमृत वेला, हमारी मुरली क्लास और हमारा नुमा शाम बहुत शक्तिशाली और बहुत एक्यूरेट होना चाहिए इसके लिए। देखो, भक्ति में भी आप सबने भक्ति की होगी, हम लोगों ने भी भक्ति की है, या आज भी हम भक्तों को देखते हैं, भक्ति के अंदर उनका बड़ा पक्का नियम होता है। सुबह उठ करके उन्होंने कोई नहा धो करके, आरती पूजा करके, फिर वो भोजन आदि करते हैं, जो पक्के भगत हैं। ऐसे ही नुमा शाम में भक्ति में हम सुना करते थे कि देवता भ्रमण करते हैं। जहाँ बुजुर्ग बोलते थे ज्योत बत्ती दीवा बाती जगा दो, क्योंकि इस समय देवता भ्रमण करते हैं, दो टाइम मिलते हैं, तो इसलिए घर के हर कोने में वो रोशनी करते थे। जो पुराने बुजुर्ग बैठे हैं तो उनको जरूर ये बात मालूम है। अब हम ज्ञानी बाबा के बच्चे बन गए, योगी बच्चे बन गए, तो भक्ति से तो एक कदम आगे बढ़ना है, और कई बार हम एक कदम पीछे हट जाते हैं। कहीं ना कहीं भक्तों का डिसिप्लिन और भक्तों की पंक्चुअलिटी और भक्तों की रेगुलरिटी ब्राह्मणों से ज्यादा होती है। ब्राह्मणों को थोड़ा अलवेलापन आ जाता है ना, अब तो शिव बाबा हमारा ही हो गया, कोई बात नहीं, उसको कहीं भी बैठ के कब भी आगे पीछे, कोई टाइम की भी परवाह नहीं, जैसे मर्जी कर लो, क्योंकि बाबा तो हमारा है और बाबा को तो 24 घंटे जब मर्जी याद कर लो, वो एक्स्ट्रा के लिए है। बट रूटीन में हमें अमृत वेला किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना है। भक्ति में भी कहते हैं जो अमृत वेले उठते हैं वो भगवान से एक्स्ट्रा मदद लेते हैं। भक्ति में भी अमृत वेले का महत्व है, भले वो हमारे से थोड़ा देरी को अमृत वेला कहते हैं। तभी तो बाबा बहुत बार मुरलियों में कहते हैं बच्चे 4 से 5 तो बच्चों का टाइम है, जिसमें भगवान सब वरदान खोल के बैठा होता है, वो तुम्हें वरदान लुटाने आए और तुम सोए पड़े हो, तो हमारे पर ही वो लागू हो जाएगा कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था क्या तुम सोए पड़े थे। और फिर कई अमृत वेला करके सो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम्हें किसी मंदिर में लेके जाने वाला था भक्तों को दर्शन कराने के लिए और भक्तों को कुछ माल बांटने के लिए, और तुम सो गए, 4:45 उठे योग से, आके सो गए, मुरली तो 6:30 शुरू होगी, 6 बजे उठ के नहा धो लेंगे। ऐसा भी काफी सारे ब्राह्मण कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें लेके जाने वाला था भक्तों को भरपूर करने के लिए, उस भाग्य से भी तुम वंचित रह गए। ऐसे ही मुरली क्लास आजकल व्हाट्सएप से कई जुड़े हुए हैं, मोबाइल पर मुरलियां आ जाती हैं, वैसे नेट पर वेबसाइट खोलो, अनेक तरीकों से मुरती है, वो सब टेम्परेरी का अरेंजमेंट है। परंतु मुरली में बाबा की श्रीमत मिलती है, तो मुरली के लिए भी श्रीमत है। मुरली को कहाँ सुनना है, कैसे सुनना है, कब सुनना है, पहले टाइम में तो मॉर्निंग क्लास को ही क्लास समझा जाता था। मुरली क्लास, मॉर्निंग क्लास विधिवत जो सेंटर पे टाइम फिक्स है मुरली का, निमित बहनों के द्वारा सुनना, डिसिप्लिन से क्लास में बैठ करके क्लास से पहले थोड़ी देर योग करना, फिर मुरली सुनना, फिर योग करना, फिर उठ करके आके उसका मनन चिंतन करना, और दिन भर में अन्य साधन से उसको रिवाइज करना। मुरली कोई न्यूज़पेपर थोड़ी है जो किसी भी कोने में बैठ के पढ़ लो और जब मर्जी पढ़ लो। हम तो मुरली को ऐसे करते हैं भी कोई बात नहीं, चलो सुबह रह गई तो 10 बजे जाके पढ़ लेंगे, 11 बजे पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, घर में मंगा लेंगे, फोटोस्टेट कॉपी ले आएंगे। ये कोई 2-4 पॉइंट्स या कोई एक कागज थोड़ी है कोई, अरे भगवान की श्रीमत है, भगवान की डायरेक्शंस हैं उसके अंदर। भगवान रोज हम बच्चों को ग्रीटिंग्स देता है, हमें गुड मॉर्निंग करता है। अगर हमने मुरली ना सुनी तो हम तो भगवान की ग्रीटिंग से ही वंचित रह गए। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का अर्थ क्या है, आपकी मॉर्निंग गुड हो। अब गुड मॉर्निंग बाबा से ली नहीं तो मॉर्निंग गुड कहाँ से होगी, दिन भर गुड कहाँ से होगा। और फिर चेक भी करना है, भगवान ने मुझे कहा गुड मॉर्निंग, क्या मेरी मॉर्निंग इवनिंग गुड रही आज, अगर नहीं गुड रही तो कहाँ श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, जो जे गुड की बजाय थोड़ी थोड़ी बैड होनी शुरू हो गई है। इसी प्रकार नुमा शाम का टाइम, जितना अमृत वेले का महत्व है उतना ही महत्व नुमा शाम का भी है। बाबा तो कहते हैं बच्चे तुम्हें मनसा सेवा करनी है अनेक आत्माओं की, हम बैठेंगे ही नहीं, खुद की प्रोग्रेस ही नहीं करेंगे तो मनसा सेवा किस समय करेंगे।
बाबा तो कहते तुम खुद भी बैठाओ और जो नहीं बैठते उनको भी तुम मन से बिठाओ, यही तो मनसा सेवा है। हम खुद बाबा के आगे बैठे और जो स्थूल में नहीं बैठे तो उनको भी सूक्ष्म में हम बाबा के सामने बिठाएं। पहले तो बाबा को कहें कि बाबा जी आपके बच्चे हैं, और फिर उन बच्चों को या उन भाई बहनों को कहें कि ये आपके परम पिता हैं, आप अब इनके सन्मुख पहुंच गए हो, अब आप इनसे अपनी शक्तियां लो, देखो बाबा से दृष्टि लो। उनको भी हम डायरेक्शन देते हैं मन की भावनाओं से, ताकि वो बाबा से कनेक्शन जोड़ करके शक्तियां लें और हमें भी मनसा सेवा का एक पुण्य हमारा डिपॉजिट हो सके। यही हमारे लिए जो दो टाइम मिलते हैं, नुमा शाम का दिन छिपता है और रात्रि प्रारंभ होती है, तो बाबा भी भ्रमण करते हैं। बाबा कहते हैं अमृत वेले नुमा शाम में मैं भी बच्चों के सेंटरों पर भी घरों में भी चक्कर लगाता हूँ, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। वही तो हमारी जोत बाती है, दीवा बाती है, वही तो ज्योति जगाना है। आत्मा को शिव बाबा से जोड़ा और बाबा से शक्तियां ली तो समझो आत्मा रूपी ज्योत नुमा शाम के टाइम में जग गई। और मैं हंसती होती हूँ मुरली के बाद, बाबा कहते ना मीठे मीठे सी की लदे बच्चों को याद प्यार, मैं कहती हूँ हमारी अब कथा पूरी हो गई, अब आरती शुरू हो गई। यही हमारी आरती है और यही आत्मा की सच्ची ज्योत है। तुम्हें बहुत बहुत ध्यान देना है इन बातों की ओर। और इनसे महत्वपूर्ण बात एक लास्ट बात सुना करके दो तीन मिनट में पूरा करेंगे। हमारा निमित बहनों से सीनियर से सही कनेक्शन, कई सोचते हैं बाबा से कनेक्शन है ना, ठीक है थोड़ा बहुत, बाकी तो बाबा से ही सब कुछ लेना है। कभी कभी बाबा भी मुरली में कह देते हैं मेरे से सब कुछ लेना है, पर बहुत बार बाबा ये भी कहते हैं, वो बच्चों की स्थिति देखते हैं कैसी बात करनी है। बाबा ने निमित जिनको बिठाया है तो भगवान की सिलेक्शन गलत नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है? तो बाबा का इंस्ट्रूमेंट है। बाबा मूल्यों में कितनी बार कहते हैं समर्पित भाई बहने या समर्पित बहने तो मेरी गुरु भाई हैं, मेरी गद्दी पर हैं। इतना रिस्पेक्ट हमारे मन में हो, जो डायरेक्शन दें उसको बाबा की डायरेक्शन समझ करके हम स्वीकार करें। और निमित्त के लिए बहुत बार बाबा बोलते हैं बच्चे निमित्त ने अगर आपको कोई गलत राय भी दी तो बाबा उसको अपने आप ठीक करेगा। या कई सवाल पूछते हैं मुरली में आता है ना, ब्रह्मा ने अगर कोई राय दी तो उसको शिव बाबा की मानो, मैं जिम्मेवार बैठा हूँ। और बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं ब्रह्मा बाबा तो अब है नहीं, हम कैसे श्रीमत लें बाबा से, सूक्ष्म में लेनी नहीं आती तो स्थूल में कैसे लें। तो स्थूल में तो हमारी दादी दीदियां ही हमारे सामने विराजमान हैं, स्थूल में हम उनके माध्यम से बाबा की डायरेक्शन बाबा की श्रीमत प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जो भी हमारे सीनियर प्लस हमारे से होशियार हैं ज्ञान योग में, जिनकी स्थिति अच्छी है, उनके प्रति रिस्पेक्ट और निमित बहनों से मार्गदर्शना, ये तीन चार बातें अगर हम जीवन में धारण करके चलते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है जो आपकी स्थिति रूपी संपत्ति को आपसे छीन सके। इस बेहद के घर में आप सब पहुंचे हैं तो जरूर ये सारी प्रॉपर्टी, वैसे दुनिया में भी होता है ना गृहस्थियों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ले, तो अभी तो आप गृहस्थी नहीं ट्रस्टी हो गए हैं। ट्रस्टी क्या करते हैं, वो इकट्ठा करने की बजाय ना वो सेवा में लगाना शुरू करते हैं। जो ट्रस्टीज होते हैं ना वो जनता की सेवा में लगाते हैं। तो अभी आप सब बाबा के बच्चे भी गृहस्थी नहीं अभी ट्रस्टी हैं। तो इसलिए स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को प्रॉपर्टी को हम सेवा में भी लगाते हैं। और ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि सेवा में लगाने से घटती नहीं है, बढ़ती है। स्थूल प्रॉपर्टी तो घट सकती है लेकिन सूक्ष्म प्रॉपर्टी तो बढ़ेगी ही। आपने किसी को खुशी दी तो आपकी खुशी कोई कम थोड़ी होगी। तो ऐसे ही जितना हम बांटेंगे उतना हमारा खजाना बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले खुद को इतना भरपूर कर लेना है, इतना स्टॉक जमा करो कि खुद भी प्रयोग करो और औरों को भी बांटो। अभी ये दो चार दिन का एक गोल्डन चांस जो आप सबको मिला है उसका पूरा पूरा लाभ लेना है और औरों के अनुभवों का भी लाभ लेना है और ज्यादा से ज्यादा बचे हुए टाइम में खूब तपस्या करो। और इस दो दिन में भी, कल 30 तारीख है, परसों बाप दादा हम सबके सम्मुख पधारेंगे, तो उससे पहले ही आप ये स्थिति रूपी संपत्ति को इकट्ठा करो और यही सौगात हम बाबा को अपनी अच्छी स्थिति रूपी सौगात देंगे तो उस हमारी स्थिति से बाबा बहुत सारी सेवाएं कराएगा आप और हम सब से, ऐसी हमारी कामना है। ओम शांति। अभी बाबा की याद में बैठेंगे।